संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 21 में प्रभु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। शिष्य मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु उन्हें दर्शन देते हैं और फिर प्रभु पेत्रुस से 3 बार प्रश्न करते हैं, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? और उसके जवाब पेत्रुस देते भी है। आखिरी में प्रभु पेत्रुस से कहते हैं, मेरा अनुसरण करो। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 20 में प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु ने इस प्रकार कहा, मेरा अनुसरण करो, तो प्रभु पेत्रुस ने पीछे मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे ईसा प्यार करते थे और जिसने बियारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु ये कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेत्रुस ने उसे देखकर ईसा से पूछा, प्रभु इनका क्या होगा? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? कई बार मैं इस पर मनन चिंतन करता हूँ। पेत्रुस को यीशु ने बुलाया, पेत्रुस को 3 बार अपना प्रेम प्रकट करने का मौका मिला और इस प्रकार प्रभु के पीछे प्रभु के अनुसरण करने के लिए पेत्रुस जाता है तो पीछे से वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे योहन दिखता है। योहन उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, प्रभु के पीछे। शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा था। पेत्रुस को यीशु ने अलग से बुलाया था, पेत्रुस को यीशु ने प्रेरितों का अगुआ बनाया था और पेत्रुस को लगा कि मुझे प्रभु ने अगुआ बनाया, लेकिन इसका क्या हो गया, ये क्यों पीछे आ रहा है? हम कई बार दूसरों के बारे में इस प्रकार के विचारधारा रखते हैं। हमको प्रभु बुलाते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, मैं किस प्रकार प्रभु से मिली हुई मेरी बुलाहट को किस प्रकार अपनाऊंगा, मैं किस प्रकार इसको स्वीकार करूंगा और इसका उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। इन सब बातों को छोड़कर हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं, इसको भी प्रभु ने क्यों बुलाया, क्या इसको भी प्रभु ने बुलाया है। हम बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित रहते हैं, यानी हम तुलना करने लगते हैं। तुलना एक खतरनाक चीज है। तुलना से ज़्यादातर जलन और ईर्ष्या उत्पन्न होती है और इसलिए शायद कुरिन्थियों के पहले पत्र में संत पौलुस कहते हैं, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संत पौलुस हमें ये बताना चाहते हैं कि प्रेम जो करता है वास्तव में उसमें ईर्ष्या नहीं है। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें, सबसे प्रेम, सबको प्रेम करें, लेकिन अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो हमारा प्रेम परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है। आज के सुसमाचार में हम एक मालिक अपनी दागवारी में मजदूरों को भेजते हैं, बड़े सवेरे उठकर मजदूरों को भेजते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद 9 बजे फिर बाहर निकल के देखते हैं कि कई लोग फिर खड़े हैं, कई मजदूर कान ढूंढ के खड़े हैं, तो उनसे भी कहते हैं तुम लोग भी जाओ। तो सबसे पहले जाने वाले मजदूरों से ये वादा किया था कि मैं तुम्हें 1 दिनार मजदूरी दूंगा शाम को, और 9 बजे गए। उनसे कितना वादा किया था ये तो पता नहीं है, इसमें लिखा कि नहीं गया है। और फिर 11 बजे और 12 बजे और कई बार जाते हैं, और जब आखिरी में जब 1 ही घंटा बचा था काम के लिए, तब भी मालिक बाहर निकलकर मजदूरों को फिर से लगाते हैं, नए लोगों को मजदूरी पर लगाते हैं। और जब उनको तनख्वाह देने का, उनको मजदूरी देने का समय आता है, तो मजदूरी देने के लिए अपने कारीगर से वे कहते हैं, और कहते हैं कि जो सबसे आखिरी में आए उनको पहले देना, उनको पहले देना। और उनको एक एक दिनार जब दे दिया जाता है, तो जो सबसे पहले आकर बड़े सवेरे से काम करने लगे थे उनको लगा कि हमको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उनको भी उतना ही मिला। और जब उनको भी उतना ही मिला तो वे तुलना करने लगते हैं, हमने सुबह से काम किया और हमको इन लोगों के बराबर कर दिया जो 1 घंटे का ही काम किया था। तो वे शिकायत करते हैं मालिक के पास जाकर, लेकिन मालिक उनसे कहते हैं आप लोगों के साथ मैंने तो अन्याय नहीं किया, क्योंकि मैंने वादा किया था 1 दिनार का और मैंने आपको दे दिया, दूसरों को ज़्यादा मिला, तो आप ईर्ष्या क्यों करते हो? मैं अपने पैसे से जो कुछ चाहता हूँ वही कर सकता हूँ, आपको इसमें क्या है? शायद जिस प्रकार प्रभु येसु ने पेत्रुस ने पूछा था, उसी प्रकार इनसे भी मालिक पूछ रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों के बारे में चिंतित होते हैं, शायद ईर्ष्या से बहुत सारे पाप उत्पन्न होते हैं। ईर्ष्या में हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी बराबरी ना करें, हमसे आगे ना निकल जाए, हमारे बराबर भी ना हो और हमसे आगे कभी ना निकले। अगर कोई निकलता है तो उसको खींच कर वापस हमारे पीछे करने के लिए हम कोशिश करते हैं। बाइबल में इस प्रकार के ईर्ष्या के बहुत सारे उदाहरण हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के 37 में हम याकूब के बेटों के बारे में सुनते हैं कि जब यूसुफ 17 वर्ष का था, तब वह अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था, और उसने अपने पिता को उनके दुराचरण की सूचना दी। इसराइल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता है, इसलिए वे उससे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकते थे। ईर्ष्या करते हैं, कारण क्या है? पिता यूसुफ को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसके साथ ईर्ष्या करते हैं और उससे बात भी नहीं करते। यूसुफ की कोई गलती नहीं है। अगर हम और पीछे जाएंगे तो उत्पत्ति ग्रंथ के 4 में हम देखते हैं कि ईर्ष्या की भावना के कारण ही काइन पाप करते हैं। काइन के पाप का कारण ईर्ष्या थी, ईर्ष्या के कारण ही काइन पाप करता है, क्योंकि उसने देखा कि हाबिल के चढ़ावे को ईश्वर स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके खुद के चढ़ावे को ईश्वर स्वीकार नहीं करते। काइन के चढ़ावे को ईश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। ईर्ष्या दूसरों को, मेरे भाइयों को मुझसे ज़्यादा पिता प्यार करते हैं। याकूब के बेटे यानी यूसुफ के भाई यही सोचते थे हमसे ज़्यादा इसको क्यों प्यार करते हैं। यूसुफ की कोई गलती नहीं थी, इनके इनसे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन यूसुफ के बारे में हमें यह मालूम है कि यूसुफ ने कभी उनसे ईर्ष्या नहीं किया। यूसुफ को उन्होंने पकड़कर कुएं में डाल दिया, फिर उसको बेच डाला गुलाम के रूप में। उस मुसीबत के गुजर कर भी यूसुफ के मन में कभी भी कोई भी बुरी भावना, शत्रुता की भावना उत्पन्न नहीं हुई। वे हमेशा लोगों को प्यार करते हैं और अपने भाइयों को माफ़ी प्रदान करते हैं, भाइयों के बारे में बुरा नहीं सोचता है। इसलिए जब हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 45 को पढ़ते हैं, वहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों से मिलते वक्त जब वे डर जाते हैं ये सोचकर कि हमारे भाई के विरुद्ध, यूसुफ के विरुद्ध पाप किया था, कुकर्म किया था, अभी वो बदला लेगा, तो ये सोचकर यूसुफ उनसे कहते हैं, अब तुम इसलिए ना तो शोक करो, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 5, अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिकारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले यहाँ भेजा है। जब उन्हें उसके भाई लोग उसको बेच डालते हैं, तब भी उसके अंदर शत्रुता नहीं है, बुरी भावना नहीं है। वो अब भी बोल रहे हैं, तुम लोगों को इसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर की योजना का भाग है, ईश्वर की योजना का भाग है। निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 11 में हम मूसा के बारे में सुनते हैं। मूसा के अंदर ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्यार है। जैसे कुरिन्थियों के पत्र में संत पौलुस ने बताया, जहाँ प्यार है वहाँ ईर्ष्या नहीं है। अगर ईर्ष्या है हमारे मन में तो हमारे अंदर प्यार नहीं है। अगर ईर्ष्या है, अगर प्यार नहीं है तो हम बच नहीं पाएंगे। यहाँ पर मूसा के बारे में कहा गया है कि मूसा ने 70 वायुवृद्धों को दर्शन कक्ष में बुलाया था और दर्शन कक्ष के आसपास उनको खड़ा कर दिया, और मूसा स्वयं दर्शन कक्ष में प्रवेश करते हैं और आसपास में 70 वायुवृद्धों को खड़ा कर देते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। ये सब जो 70 लोग वहाँ खड़े थे, जिनको मूसा ने इकट्ठा किया था, वे लोग भविष्यवाणी करने लगे। लेकिन दो पुरुष शिविर में रह गए थे, एक का नाम एल्दाद था और दूसरे का नाम मेदाद, और वे लोग दर्शन कक्ष नहीं आए थे, वे अपने ही शिविर में रह गए थे। और ईश्वर की दिव्य प्रेरणा उन लोगों को भी प्राप्त हुआ, ईश्वर से दिव्य प्रेरणा पाकर वे भी वहां भविष्यवाणी करने लगते हैं शिविर में ही। तो कुछ लोग इसे देखते हैं कि दो लोग अलग है, 70 लोग मूसा के साथ दर्शन कक्ष के आसपास खड़े होकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनको दिव्य प्रेरणा प्राप्त है, लेकिन दो लोग अलग है, अपने ही शिविर में खड़े होकर भविष्यवाणी करते हैं। और वे खबर देते हैं योशुआ को, योशुआ जो बचपन से ही मूसा की सेवा करता था, ये कर मूसा से अनुरोध किया, मूसा गुरुवर उन्हें रोक दो। इस पर मूसा ने कहा, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और सारी जनता भविष्यवाणी करती। मूसा कहते हैं किसी को नहीं रोकना है, अगर किसी को ईश्वर दिव्य प्रेरणा दे रही है हमें खुश होना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती रहे। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे अंदर जरा सा भी ईर्ष्या है, इसका मतलब हमारे अंदर प्रेम की कमी है, क्योंकि प्रेम ईर्ष्या नहीं करता।